जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारियम जयो राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Gauranga Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से एक श्लोक पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में हैं और कुर्म क्षेत्र नाम का एक स्थान है। कल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जिसके बारे में बता रहे थे तो मैंने सोचा क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय है तो प्रचार का महत्व ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु उपदेश कर रहे हैं कुर्म ब्राह्मण को। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हय तारे देश जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हय तारे देश जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हय तारे देश। जारे जिस किसी से देखा तुम मिलो तारे उसको कह कहो कृष्ण उपदेश भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण की पूजा करने का परमाश देती है उसका उपदेश अमार आज्ञाय मेरी आज्ञा से गुरु हैया गुरु बनकर तार उद्धार करो ऐ देश इस देश का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को बोल रहे हैं। हरे को उपदेश दो कि वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे इस तरह गुरु बनो और हर इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है, किंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर में सुखपूर्वक रह सकता है। हम तो हर एक से इतना अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे उसका जप करें। यदि वो कुछ पढ़ना जानते हैं तो भगवद गीता शतारूप और भागवत पढ़ जाए तो और भी अच्छा है। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है और अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसीलिए सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्य कलाप में लगने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। घर में रहते हुए परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को सारे भक्तों को सुझाव है कि वो कूपन कलेक्ट कर ले, इसके लिए कूपन प्रसाद के लिए, जिनको भूख लगी है वो कूपन। हरे कृष्ण। शिवेंद्री प्रभु बहुत कंसर्न है पर तो अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को अवैध संबंध मांसाहार जुआ और नशे से बचना चाहिए। चार में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है, हर एक वैद्य को विवाह कर लेना चाहिए। विशेष रूप से हर स्त्री को अवश्य विवाह करना चाहिए। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है तो कुछ पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, इस तरह समाज में वेश्यावृत्ति नहीं पनपती। यदि पुरुष के एक से अधिक विवाह कर ले तो अवैध यौनाचार रुक जाएगा और कृष्ण को अर्पण करने के लिए अन्न फल दूध भी तैयार कर सकते हैं। भला मनुष्य क्यों व्यर्थ ही मांसाहार को लत डाले? विभत्स कसाई घर चलाने से क्या फायदा है? धूम्रपान करने से और चाय कॉफी पीने से क्या लाभ है? अरे लोग पहले से ही भौतिक जीवन मदोन्मत हैं। यदि नशा करेंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर नहीं रहेगा। मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यर्थ मन को विक्षिप्त नहीं बनाना चाहिए। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है आध्यात्मिक पद प्राप्त करके वापस भगवान के धाम लौटना। आध्यात्मिक साक्षात्कार का यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को चैतन्य महाप्रभु ने जो कुर्म ब्राह्मण को शिक्षा दी है उस उपदेश में बताई विधि से जीवन को पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता और भागवत में दिव्य उपदेशों का प्रचार करना चाहिए। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज जो हमने विषय लिया है वो भगवान के संदेश का प्रचार करने का महत्व बताता है। ये प्रसंग उसमें का है आज से करीब 500 साल पहले जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर लीला कर रहे थे। वही भगवान कृष्ण जब वृंदावन में रास लीला करते हैं, वही भगवान कृष्ण कलयुग में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार एक भक्त के रूप में लीला करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हईलो से बलराम होइलो नीताई। इसका अनुवाद है कि ब्रजेंद्र नंदन जो नंद नंदन कृष्ण है वही शचि नंदन गौर हरि के रूप में आए हैं और बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तीन ही न जत छिलो हरि नाम उद्धारे तार साक्षी जगाई मद। जो दीन हीन पतित है उन सबको भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, उसका सबूत है जगाई मधाई। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं उस समय एक जगाई मधाई थे, आज बहुत सारे जगाई मधाई, प्रैक्टिकली एवरीवन इज मोर ऑर लेस जगाई मधाई। तो प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु की कृपा बांटने के लिए आए हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। तो जब हम उनकी पुस्तक वितरण कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम नित्यानंद प्रभु की कृपा बांट रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अपने आखिरी दिनों में, आई विल नॉट डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। मैं कभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं अपनी पुस्तक के रूप में रहूंगा शाश्वत रूप से। तो गुरु के संग के दो तरीके होते हैं, एक होता है बापू संग। बापू मतलब शारीरिक रूप से साथ में रहना, सेवा करना, चरण धोना, उनको भोजन अर्पण करना, और यह भी बहुत अच्छा तरीका है सेवा का। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है वाणी। वाणी का मतलब है संदेश, जो गुरु की वाणी है। गुरु वाणी का इतना महत्व है, आप सब धर्मों में देखोगे। जैसे मैं जिस परिवार में बड़ा हुआ, मेरे पिताजी की माता जो हैं दादी, वो पंजाब से थे, तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते थे। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में वो न केवल पुस्तक पढ़ते हैं, उस पुस्तक की पूजा भी करते हैं, क्योंकि जब उसमें जो वाणी है वो भगवान से अभिन्न है। इनफैक्ट आप में से जिन भक्तों ने पढ़ा होगा या सुना होगा तो उसमें बहुत बार कृष्ण का उपदेश आता है। गुरु नानक देव स्वयं भी कृष्ण भक्ति हैं, हालांकि डायरेक्टली नहीं बताते। मैं कहानी पढ़ रहा था कैसे वो जगन्नाथपुरी में भी आए एक बार। जब जगन्नाथपुरी में गए तो ऐसा बताया कि चैतन्य महाप्रभु से भी मिले थे, और एक बार तो उनको किसी कारणवश मंदिर में नहीं आने दिया क्योंकि वो सिख बैकग्राउंड से थे, और वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और उनके एक असिस्टेंट थे मर्दाना, जो इंटरेस्टिंग, उनके असिस्टेंट मुस्लिम फैमिली से थे। तो वो बोल रहे थे कि गुरु महाराज कहाँ लेकर आ गए, दर्शन भी नहीं, प्रसाद भी नहीं। कूपन मिल गया था लेकिन प्रसाद नहीं। प्रसाद कूपन से नहीं मिलता, प्रसाद जब भगवान चाहते हैं तभी मिलता है। लेकिन कूपन लेना जरूरी है। तो वो बहुत चिंतित हो गए, गुरु महाराज कोटे आनला मला, प्रसाद नहीं। कितना भी एडवांस डिवोटी हो, बिना प्रसाद के कितने दिन रह सकते हैं? अगर आप किसी को नहीं चाहते घर में या मंदिर में तो उसका प्रसाद बंद कर दो, वो हाथ जोड़ के अपने आप चला जाए। तो बहुत परेशान थे। उतने में कोई एक व्यक्ति आया, बहुत अच्छे बर्तन में जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आया उनके लिए। भगवान जगन्नाथ अरेंज करते, राजा, एक्चुअली राजा को उनको दर्शन अलाउड नहीं था, लेकिन भगवान स्वयं आए राजा के स्वप्न में, बोले कि एक महान भक्त है, उनको दर्शन दो, और फिर उनको दर्शन करें। इसलिए हालांकि अब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ हिंदुओं को अलाउड है, लेकिन सिखों को भी अलाउड है, सिख व्यक्ति जा सकते हैं उसके अंदर। यानी मैं कहानी इसलिए बता रहा था कि गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, उसमें करीब 800 बार कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण, राम, गोविंद, हरि। ये मुझे एक सिख मित्र ने बताया। मैं जैसे बोलते हैं सत नाम वाहे गुरु, वाहे मतलब व मतलब विष्णु, ह मतलब हरि, ग गोविंद के लिए, र राम के लिए। ऑफकोर्स कोई कोई जो थोड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, जो थोड़ा कट्टर हैं, वो इस बात को नहीं स्वीकार करते, लेकिन वास्तविक सत्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो बुक्स हैं ये भगवान से अभिन्न है। जैसे आज के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अमर आज्ञा गुरु है तारे, कृष्ण उपदेश बोल रहे हैं। तो कृष्ण उपदेश का, कृष्ण का उपदेश करो। और प्रभुपाद का ट्रांसलेशन बोलते हैं कि गीता और भागवत में दिए हुए संदेश। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है वो श्लोक से थोड़ा अलग लगता है। मैं पहले इस्कॉन में आने से पहले और बहुत संस्थाओं में घूमता था, सोमवार को चिन्मया मिशन, मंगलवार को रामकृष्ण मिशन, बुधवार को महानुभव मिशन, जहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता था उस समय कूपन भी नहीं था तो फिर मैंने बहुत सारी गीताएं पढ़ी थी, गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता, फिर एक मंदिर में जाता था महानुभव मंदिर महाराष्ट्र में, तो वहाँ किसी ने मुझे बैक टू वर्ल्ड मैगजीन दी और फिर वो मैं एड्रेस दे के जुहू मंदिर गया तो मुझे अच्छा लगा रहा था। रस बिहारी लिटिस बहुत छोटा मंदिर था, कुंज बिहारी मंदिर से भी छोटा था राधा रस बिहारी मंदिर। तो फिर जब मैंने वहाँ पे पुस्तक पढ़ना शुरू किया, मेरे को भगवत गीता का अच्छा नॉलेज था, मैं मानता था ऐसे एटलीस्ट किया, तो मैंने गीता अनुवाद देखा था, अरे प्रभुपाद यहाँ पे श्लोक में तो ये लिखा है और प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, जास्ते शाणा लग रहे हैं यू नो, मैं अपने आप को सोचा था कि मैं। फिर मैंने बाद में ध्यान से स्टडी किया और वहाँ सीनियर डिवोटी से पूछा, तब उन्होंने समझाया कि कैसे एक्चुअली श्लोक का जो रियल अर्थ है वो शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं। क्यों हम इतने उत्साह से भगवद गीता वितरण कर रहे हैं इस महीने में, भगवद गीता तो बहुत सारे हैं, आज आप ऑनलाइन देखो इतने सारे भगवद गीता हैं, और वैसे मराठी में तो हिंदी में भारत में तो शायद ही कोई व्यक्ति जिसने गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अधिकांश भगवद गीता में जो है ऑथर्स अपना अपना मत बताते हैं, भगवद गीता एज इट इज नहीं, भगवद गीता एज आई थिंक इट इज, माजा मता प्रमाणे है ना। जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण बड़े प्रेसिडेंट रहे हमारे देश के, बोलते हैं जब कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो मेरे को प्रणाम करो, वो कृष्ण वो ये कृष्ण नहीं है मुरलीधर कृष्ण, वो कृष्ण के अंदर जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी शरण में जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को बहुत नाराज होते, प्रभुपाद जी बहुत गुस्से होते थे सुन के, कृष्ण में अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण एब्सोल्यूट है, ऐसे नहीं कि कृष्ण के अंदर भगवान बैठे हैं, यू नो जैसे हमारे अंदर है शरीर के अंदर आत्मा है, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, हमारी सीमाएं हैं, मैं यहाँ पर हूँ तो मुंबई में नहीं हूँ, मुंबई में हूँ तो यहाँ नहीं हूँ, लेकिन भगवान सब जगह पर है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए अहो मुल्तान में पंजाब में, जब ये पंजाब का वो भाग जब पाकिस्तान में चला गया मुल्तान, मेरे माता पिता का जन्म वहाँ से हुआ था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुल्तान में जन्म हुआ भगवान नरसिंहदेव, और आप दक्षिण भारत में सब लोग बोलते हैं अहोबिलम में हुआ, आप में से कितने भक्तों को लगता है कि अहोबिलम में हुआ भगवान नरसिंहदेव प्रकट, कितने को लगता है कि मुल्तान में हुआ, कितनों को लगता है कि नरसिंह भगवान प्रकट ही नहीं हुए, जिनको लगता है प्रकट ही नहीं हुए आज रात को भगवान आके आपके छाती पे डांस करेंगे शांत रूप से तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद यू आर सेइंग दैट लॉर्ड नरसिंह अपीयर्ड इन मुल्तान बट डिवोटीज इन साउथ इंडिया दे से दैट लॉर्ड नरसिंह देव अपीयर्ड इन अहोबिलम, क्या सही है? तो प्रभुपाद क्या बोले, प्रभुपाद बोले इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदय, नरसिंहदेव सब जगह पर कहीं से भी प्रकट हो सकते, तो भगवान के रूप में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो अधिकांश जो गीताएं हैं मेजॉरिटी उसमें ऑथर अपना ओपिनियन बताते हैं, इसलिए भारत में विशेष करके प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है एक तो होता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आता, तैरना नहीं आता तो मैं पानी में जाऊंगा ही नहीं, अगर मुझे आता है तो मैं जाके आ सकता हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे लगता है मुझे आता है, आई डोंट नो स्विमिंग बट आई थिंक आई नो, तो बहुत डेंजरस है। भारत में ये प्रॉब्लम है कि कईयों को मतलब ऐसे लगता है कि मेरे को भगवद गीता मालूम है, मुझे सत्य मालूम है, और उसमें से कई ऐसे भी हैं जो निर्दोष हैं इनोसेंट हैं, क्योंकि उनको बस परंपरा से कनेक्शन ही नहीं मिला। भगवद्गीता के श्लोक तो शुद्ध हैं, श्लोक तो 700 श्लोक सब, कोई इसमें मतभेद नहीं है। अभी भी भारत में कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे, मैं मैं वहां पर जब मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ भारत में, तो पहली बार मैं कुरुक्षेत्र में रहता था भक्ति करने के लिए, लड़ाई के लिए नहीं। और वहां पर पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है NIT, जिसको पहले REC बोलते थे। तो उसमें मंदिर में बहुत पैसे की बहुत कमी थी, इतना था कि हमारे पास प्रसाद के लिए कुछ पैसे नहीं थे। और जयदेव प्रभु या श्वेतदीप प्रभु की तरह कोई कलेक्टर भी नहीं थे जो बड़ी प्रचुर मात्रा में धन लाए। हमारा मंथली कलेक्शन था 0.00। तो इसलिए हम अनाज मंडी में जाते हैं, कोई अनाज मिल जाए, कोई सब्जी मिल जाए, इतना सिंपल प्रसाद है। इसलिए मैं कोई मंदिर में जाता हूँ तो मुझे कोई कमी नहीं महसूस होती, कि मैं कंपेयर करता हूँ कुरुक्षेत्र में क्या मिल रहा था। तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र में कॉलेज से 4 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पर भगवान ने भगवद गीता बोली। आप में से कोई गए हैं कुरुक्षेत्र? आपने देखा है ज्योति सर, वो पेड़ है जिसके नीचे भगवद गीता बोली। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जॉब लिया क्योंकि मंदिर में पैसे की बहुत कमी थी। तो प्रोफेसर, मेरे को बोला गया कि आपको यहाँ 4 घंटे ड्यूटी करना, मतलब एक शर्त पे। मिला ठीक है, मैं सैफरन में हूँ, मैं भगवे में ही जाऊँगा। और सिर्फ तो प्रोफेसर ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको भी लेक्चरर की ज़रूरत थी। उस जमाने में MTech कंप्यूटर्स बहुत कम होते थे जो टीचिंग करने जाए, आजकल तो MTech बहुत कॉमन हो गए, PhD कई तेरी वे। तो मैं फिर वहाँ पर से बहुत पास में था, तो मैं कई बार लेक्चर करके या लेक्चर छोड़ के अंदर जाता था। अभी पता भी चल जाता क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पे उस पेड़ के नीचे भगवद गीता पढ़ना एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस। और तो वहां पे इतने सारे आश्रम हैं उधर, और भगवद गीता सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सब इस बहुत कम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि कृष्ण भगवान है और मुझे उनकी शरण में आना है और हरे कृष्ण मंत्र जप कर। यहाँ मंदिर में किसी नए भक्त से पूछो तो सबको पता ही बात कि कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा हो रही है, अभी आरती हो रही है, उनकी भक्ति करनी है और हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। सो सिंपल। लेकिन अधिकांश लोगों को ये बात पता नहीं। गीता पढ़ने के बाद भी मैं जब उसके पहले एक और संस्था है जहाँ पर 18 दिन गीता पे 18 लेक्चर्स हुए बम्बई में। मैंने गीता अज्ञान या बोलते हैं ज्ञान या लेकिन 18 दिन होने के बाद मैं उस स्वामी जी के पास गया। मैं कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरी पूजा करो, लेकिन आपके मठ में तो कृष्ण का कोई मंदिर ही नहीं है। तो बोले नहीं नहीं वो अच्छा है, वो बुक के लिए अच्छा है बस। तो प्रभुपाद की पुस्तक से क्या होता है कि लोगों के हृदय में वो सत्य अंकित हो जाते हैं कि मुझे कृष्ण की शरण में जाना है। बहुत सरल सत्य है लेकिन बहुत गहरा सत्य। सारे दुखों का कारण क्या है? लोग कृष्ण को भूल गए। और उसके समस्या का हल क्या है? अगर वो जान ले कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और भगवद गीता में आप देखोगे प्रभुपाद जी के अंदर कितनी अर्जेंसी है। प्रभुपाद शुरुआत से ही बताते हैं। ये भी मेरा एक ऑब्जेक्शन था जब मैंने भगवद गीता पढ़ी पहले। मैंने बोला प्रभुपाद कृष्ण तो लास्ट में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन प्रभुपाद इंट्रोडक्शन से ही बोल रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करनी। तो मैंने भक्त से पूछा कि प्रभुपाद जी तो गीता में लास्ट में आता है समर्पण, पहले तो कर्म योग ध्यान योग आता है। तो एक डिवोटी ने बताया कि प्रभुपाद इतने दयालु हैं कि वो सोच रहे हैं कि शायद कोई व्यक्ति लास्ट पेज तक पहुंचे ही नहीं, पहले उसको ज्ञान दे रहे। सेंस ऑफ अर्जेंसी। प्रभुपाद शुरुआत में ही बोलते हैं देयर इज कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स ऑलवेज थिंक ऑफ मी एंड लॉर्ड चैतन्य सेज ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बोलते हैं मेरे बारे में चिंतन करो, चैतन्य प्रभु बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप। तो प्रभुपाद जी की गीता में इतना गहरा सत्य है कि बेसिक सत्य से लेकर कि मैं शरीर नहीं आत्मा, महाप्रभु की जो टीचिंग्स है कीर्तनीय सदा हरि, सब उसी में भरा हुआ है। तो जैसे छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा, जैसे कोई छोटे से बैग में बड़े बड़े हीरे मणि को भर देता है। आजकल जिप्ड फाइल आते हैं ना, छोटे डेटा बाद में अनजिप करते हैं। आजकल चिप्स में हम देखते हैं कि LSI VLSI ना, प्रभु जी से इंजीनियर यू ना राइट, व्हाट डू यू कॉल इट नाउ, VLSI टेक्नोलॉजी, VLSI चिप्स। ये अलग चिप्स है, ये पोटेटो चिप्स नहीं है। सिलिकॉन चिप्स है ना, तो उसमें आप देखोगे इतना छोटा सा आपके मोबाइल में जो चिप होते हैं उसमें छोटे से में कितना डेटा आ जाता है। ऐसे जो भगवद गीता है उसमें इतने छोटे से 700 श्लोक में सारे शास्त्रों का निचोड़ दिया। और कृष्ण ग्वाले के रूप में भगवद गीता का दूध पिला रहे हैं, अर्जुन बछड़े हैं, बछड़े के माध्यम से हम सबको ये मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता और भागवत पे जोड़ दे रहे हैं, दोनों कृष्ण कथा है। एक है जो कृष्ण ने बोले है, वर्ड स्पोकन बाय कृष्ण, वो है भगवद गीता, और दूसरा है वर्ड स्पोकन अबाउट कृष्ण, कृष्ण के बारे में भागवत, दोनों आवश्यक है। ये प्रसंग है जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकले। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में बहुत कृपा बांटी, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। क्यों संन्यास ले लिया? ऐसा नहीं कि जैसे कई बार परिवार में घर में झगड़ा हो जाता है, पति बोलते हैं ठीक है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं चाल लो, अब बस स्टॉप जाके फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वह थोड़े समय के लिए होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? उनके पत्नी इतनी पतिव्रता, सुंदर, सेवा भावना से मग्न थे। महाप्रभु ने संन्यास लिया बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। महाप्रभु की संन्यास लीला जो है वो एक भगवान के कंपैशन, दया भावना का स्वरूप है। जो भगवान लक्ष्मीपति हैं, जो भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है कि उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के रूप में, और वो भगवान जो है अभी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो महाप्रभु संन्यास इसीलिए लेते हैं कि हम सबको कृष्ण भक्ति देने के। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसीलिए संन्यास लिया। जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो प्रभुपाद के, प्रभुपाद जो कृपा बांटना चाहते हैं उसमें हम सहायता कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी के एक पोस्टमैन प्यून की तरह बन रहे हैं, जैसे प्यून लेटर लेकर आता है कि ये साहब का लेटर है, तो प्रभुपाद जी का संदेश हम सबको बांटने का प्रयास कर। चैतन्य प्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन मत जाओ, वृंदावन बहुत दूर है जगन मायापुर से। और उस जमाने में किसी व्यक्ति को कोई संदेश देना हो तो एक ही तरीका था कि किसी को पैदल जाना पड़ता। आजकल तो आप यहीं पर कोई बटन दबाओ और आपका मैसेज अमेरिका पहुंच जाता। अच्छा लेक्चर में भी कुछ लोग कर रहे होंगे, लोगों को आदत होती है स्मार्टफोन की, जस्ट टाइप वन वर्ड वन बटन और मैसेज, उसी में मैसेज भेजना, यानी चल के जाना पड़ता था। इमेजिन अगर यहाँ से बम्बई चल के जाना है कम से कम कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे, अगर हम समझो 5 किलोमीटर की स्पीड से भी जाते हैं ऑलमोस्ट इट विल टेक 20 आवर्स घाट में अगर सर्वाइव हुए तो। लेकिन आजकल तो इतना ईजी है मैसेज भेजना। फिर सची माता बोली आप वृंदावन मत जाओ, आपको कृष्ण के साथ रहना है, वही कृष्ण जो वृंदावन में है वही जगन्नाथ है। वृंदावन राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, तो वो जगन्नाथपुरी में जाने का निश्चय किया। महाप्रभु निकले तो भक्तों ने बोला अभी मत जाओ क्योंकि अभी रथ यात्रा का समय है, रथ यात्रा हो जाए उसके बाद जाना। फिर रथ यात्रा हो गई, अभी मत जाओ, अभी डोल यात्रा है, डोल यात्रा के बाद जाना। डोल यात्रा हो गई उसके बाद अभी मत जाओ, अभी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद जाना। इस तरह कुछ दिनों तक भगवान रुके। और फिर ये जो मैं बोल रहा था जगन्नाथपुरी से वृंदावन की थी, मैं कन्फ्यूज हो गई। लेकिन जब शांतिपुर से बहुत दिन 10 दिन तक महाप्रभु को रोक के रखा और फिर भगवान बोले मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, अब मत रोकिए मुझे। जब महाप्रभु निकले उनके साथ 4-5 लोग थे, नित्यानंद, जगदानंद, गोविंद, दामोदर, मुकुंद। और भगवान निकलने समय भक्तों से पूछे कि आप सब भक्त जा रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, रास्ते के लिए कुछ खरीदना होगा उसके लिए? तो भक्तों ने जवाब दिया कि हमने कुछ भी नहीं लिया, आपकी आज्ञा के बिना कैसे लेते। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा आपने नहीं लिया, अगर आपने कुछ लिया होता तो यहीं से वापस भेज देते आपको, क्योंकि भगवान निश्चय करते हैं किस समय क्या व्यक्ति को मिलना है और वो आगे बढ़ पड़े। महाप्रभु रास्ते में बहुत स्थानों में रुके, जिसमें खीरचर गोपीनाथ में रुके। एक जगह पे तो उनको टैक्स भरना था और उस समय इंडिविजुअल टैक्स होता था, मतलब जैसे हम 5 भक्त जा रहे हैं तो हर एक का 50 रुपये, तो 250 रुपये देने पड़ते पर्सनल। तो महाप्रभु को देख के वो टैक्स कलेक्टर समझ गया सन्यासी है, बोले आप तो सन्यासी हो, अब आगे जा सकते हो, लेकिन ये 5 लोग आपके पीछे आ रहे हैं, क्या वो आपके साथ ही हैं? महाप्रभु बोले कि इस दुनिया में मैं सन्यासी हूं, सिवाय जगन्नाथ के मेरा कोई नहीं है। तो बोले ठीक है आप जाओ, इनको देख लेंगे हम। उनके आते ही बोले कि आप सब 5 व्यक्तियों को टैक्स भरना होगा, क्योंकि आपके ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं आपको पहचानते ही नहीं होगा। एवरीबॉडी बिवल्डर हो गए कि भगवान ने बोला पैसे मत लेना, क्रेडिट कार्ड मत लेना, डेबिट कार्ड था ही नहीं उस समय। नित्यानंद प्रभु बोले थोड़ा रुक जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। देख हमारे जीवन में कोई घटना होती है, इसमें लगता है कि भगवान अन्याय कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो जानना चाहिए कि इसमें भी कुछ भगवान की कृपा है। भगवान का हर एक चीज में एक योजना होती, कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। थोड़ी देर बाद महाप्रभु आगे गए और एक शिला पर बैठ गए, पत्थर पर, जस्ट एक्सटेसी में, जगन्नाथ, ओ नीलाचल चंद्र, हे नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कब कब मैं आपके रूप को देखूंगा। ऐसे जमीन में लौटने लगे, तब वो टैक्स कलेक्टर का हृदय बदल गया, उसने मतलब आप सब के साथ ही आप भी जा सकते हो, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। फिर महाप्रभु आगे गए, उन्होंने देखा एक कोई एक जगह पर एक कोई एक व्यक्ति छाछ बेच रहे थे, बटर मिल्क ताक। महाप्रभु को बहुत प्यास लगी थी, तो महाप्रभु ने मांगा, बाकी लोग 1 गिलास 2 गिलास, महाप्रभु ने पूरा मटका ही पी लिया, क्योंकि महाप्रभु हैं इसलिए महान इन एवरीथिंग। और पीने के बाद जब उन्होंने पूछा इसका टका पैसे कौन देगा, महाप्रभु बोले ये 5 भक्त है ना। ये मेरे ही साथी हैं, ये मेरे से अलग कभी नहीं होते। महाप्रभु दिखाते हैं कैसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर। कैसे मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम कृष्ण नहीं है, हम तो उनके दासानुदास। तो जब आगे चले गए और फिर जब डिवोटीज आए तब पूछा कि हरी बोल ये बिल कौन क्लियर करेगा। तब सब बिल्डर हो गए। नित्यानंद प्रभु बोले वेट एंड वॉच, देखो अभी क्या होता है। थोड़ी देर बाद उसका हृदय बदल गया, बोला नहीं आप जा सकते हो, सन्यासी को बोलना ये मेरी तरफ से सेवा है, थैंक यू। अब सोचने लगा, अब तो जनरली क्या होता है कि वो शाम के समय वापस जाते हैं तो पूरा ताक बिक जाता है और जेब में कुछ पैसे भी होते हैं, लेकिन अब क्या बर्तन खाली तो हो गया लेकिन जेब में पैसे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कभी दिन बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी कुछ नहीं मिलता, कोई बात नहीं, चलो। मटका उठाने गए, सो हैवी, इतना भारी लगा, उन्होंने खोल के देखा तो उसमें क्या था, उसमें हीरे रत्न मणि ज्वेल्स प्रेशियस आइटम्स भारी। तो इसका एक तात्पर्य भी है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन यू गिव टू कृष्णा यू आर नेवर द लूजर। आप कृष्ण को देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। आपको लगता है कि मैंने इतनी सेवा की बदले में कुछ नहीं मिला, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी सेवा रिकग्नाइज नहीं होती, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान हमको एक छोटी चीज के बदले में करोड़ों गुना ज्यादा चीज दे रहे। जैसे इस भक्त ने भगवान को एक मटका छाछ कर दिया, बटर मिल्क, छाछ की वैल्यू क्या है? ऐसे नहीं कि छाछ कोई यू नो कोई 10,000 रुपये लीटर है, ऐसे नहीं, तो बहुत सस्ती चीज है, लेकिन बदले में बहुत प्रेशियस। हम भगवान को इतनी छोटी सी चीज, अपना समय दे रहे हैं, स्पेशली मैराथन में समय देना भगवान के लिए, हम अपनी एबिलिटीज दे रहे हैं, हमारी योग्यताएं दे रहे हैं, हमारा बोलने की कैपेसिटी दे रहे हैं, और भगवान हमें क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम, भक्तों का संग, भागवत का संदेश। तो कई बार हमारी सेवा में सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। मैंने स्वयं देखा, जब मैं पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करता था, मेरी सेवा थी एक्चुअली राधा गोपीनाथ मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, पहले 2-3 घंटे, और फिर हम लोकल ट्रेन्स में करते थे। फिर एक दिन इच्छा हुई, किसी ने बोला वीटी स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे और अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्योंकि लोग ट्रेन में बैठे होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। तुमने टीसी से दोस्ती कर ली, उसको थोड़ा सा राजभोग महाप्रसाद दे दिया, और फिर उसके बाद हम जब ट्रेन चलने से पहले करते थे, स्पेशली शाम के समय करते थे, क्योंकि दोपहर को मंदिर में प्रोग्राम होने के बाद जैसे प्रगति एक्सप्रेस 425 डेक्कन क्वीन पुणे की ट्रेन में, और करते करते क्या हो गया कि मैं पुणे ही पहुंच गया। मैं 6 साल तक राधा गोपीनाथ मंदिर में ही था, उसके बाद मुझे आज्ञा दी गई। कभी कभी तो हम लोग ट्रेन में बैठ जाते थे और लोनावाला तक जाके वापस लौट कर आते थे, टिकट लेकर बैठते थे। लेकिन फिर भी टीसी ऑब्जेक्शन करते थे, टिकट आएगा? हाँ टिकट है। बोले टिकट है बैठने के लिए, बांटने के लिए नहीं है, बोलते थे। तो फिर हम उसको एक पुस्तक देते तो वो शांत हो जाते, और कभी कभी उतार भी देते, चलो कर्जत में उतर जाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत नम्र बनना पड़ता है, ये भी एक फायदा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत कम जगह है जहाँ पर लोग एकदम खुशी से बोलेंगे आइए बैठिए हमारी कंपनी में बांटिए, और ये लो आपके लिए खीर और काजू बादाम है। कोई कोई डिवोटीज हैं ऐसे, हमारे राजस्थान में एक डिवोटी हैं भिलवाड़ा में, भूरीदा प्रभु, उन्होंने ऐसा फैक्ट्रीज में बुक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज किया कि एक एक जो सब स्टाफ मेंबर को बुक्स, और उनके सैलरी से डिडक्ट होता है, जिससे उनको इमीडिएट कैश नहीं देना पड़ता। हर बार कैश देने में लोगों को थोड़ा सा दुख लगता है ना, भगवान के बाद सबसे प्रिय चीज़ है तो लक्ष्मी देवी है, या कई लोगों के लक्ष्मी देवी ज़्यादा प्रिय है। तो ये तो कभी कभी, अधिकांश समय चैलेंजेस आते हैं, इतने चैलेंज होते हैं। कई बार जगह पर विरोध होता है, कई बार बिल्डिंग से बोले थे आप मत करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हो, भगवान प्रयास से सफल, प्रयास से प्रसन्न है। हमारे वृंदावन प्रभु जी तो हमारे कई कई वर्षों तक बस पार्टी में आते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, पहले राधा रास बिहारी मंदिर से, राधा गोपीनाथ मंदिर से। इस लाइक मेरे बड़े भाई हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी, भक्ति में भी, कितना तकलीफ है सहन के। एक्चुअली जब कोई तकलीफ दे या कोई कठिनाई आए तो उससे हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है, फिर हमारी असली परीक्षा होती है। अगर सब जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान हो कि बस आओ बुक रखो और खीर खा के चले जाओ, तो फिर सब वॉलंटियर्स हो जाएंगे, एटलीस्ट सेकेंड पार्ट के लिए सब हो जाएंगे, यू नो। तो भगवान हमें डिफिकल्टीज भेजते। भारत में तो फिर भी आसान है, अभी मैंने देखा कई कंट्रीज में, जर्मनी, एक डिवोटी मुझे फोन कर जर्मनी से, मतलब टेम्परेचर क्या है तो बताए, दिन के समय 6 डिग्रीज चल रहे टेम्परेचर, 6 डिग्रीज, हरे कृष्ण। हमारा अभी रात में 18 होता है तो हमको ठंडी लगती है, और ऐसे मौसम में भक्त जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कैसे जो रशिया और क्यूबा, यूगोस्लाविया, ये सब कंट्रीज जहाँ पर इतना विरोध रहा है, आयरन कंट्रीज बोलते हैं, अभी तो उतना विरोध नहीं है, आज से 20-25 साल पहले इतना विरोध था, ऐसे ऐसी जगह पर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, ट्रिक्स यूज करते। एक भक्त तो मुझे बता रहे थे कैसे वो एक एक उनको व्हीकल लेकर जाना होता, और जैसे एंट्री करते कोई कंट्री में तो उनका विरोध होता था, तो क्या करते वहां से दूसरे देश, दूसरी जगह पे बॉर्डर से एक कार, जैसे मान लो मेरे पास एक मारुति वैन है, तो मारुति वैन में बुक्स लेकर जा रहा हूँ, और वो मैं वो बॉर्डर तक ले जाता हूँ, और जो मेरे पहचान के दूसरे व्यक्ति वो वैसा ही वैन वहाँ लेकर आते, और बॉर्डर पे दोनों मिलते और ऑफिसर से बातचीत करते मीठी मीठी, और फिर व्हीकल से एक्सचेंज करके निकल जाते। एक बार तो देवामृत स्वामी महाराज बता रहे थे, वो एक एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग भी, और वहाँ पर उस समय KGB बहुत एक्टिव थे, KGB जो रशिया के, जो जैसे भारत में से CBI होता है या CID होते हैं उस तरह के, और उनका कार्य था कि लोगों को गलत संघ से बचाना, मतलब प्रभुपाद के बुक से बचाना। असत संग त्याग, है ना, हर एक का डेफिनेशन अलग अलग है। तो उनके प्रोग्राम में एक व्यक्ति आने लगे, एक यंग लड़का, और वो बोला कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप मेरे घर में आके कीर्तन करो। तो उस बच्चे को भी पता नहीं था कि उनकी मदर जो है वो केजीबी एजेंट थी, और जो भक्त उस देश में आए थे, क्योंकि प्रॉपर परमिशन से आना मुश्किल होता है, किसी तरीके से अंदर आए थे, तो गवर्नमेंट को पता था कि ये लोग पुस्तक बांटने या किसी आए, तो उनके नाम फोटोग्राफ्स उनके पास थे, लेकिन पता नहीं था कहाँ पर बांट रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने बोला आप मेरे घर आओ कीर्तन के लिए, और कीर्तन जब शुरू हुआ तो बाद में उसकी मदर को पता था ये हरे कृष्णा वालों को पकड़ना है, इसलिए उन्होंने बहुत खुशी से परमिशन दे दी। और जब कीर्तन चल रहा था तो वो देखने आए कि कोई, क्योंकि उनके पास पूरे फोटोग्राफ्स थे जो ये गलत काम में लग रहे हैं, पुस्तक बांटना ये सब गलत काम है उनके अनुसार। तो उन्होंने देखा, वो सबको देख रहे थे, सब तो लोकल व्यक्ति थे, सिर्फ देवामृत महाराज जो है वो फॉरेन से थे, तो सबको देख रहे थे, सबको देख रहे थे, सबकी दृष्टि डाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने महाराज की दृष्टि डाली, उनकी आंखों की ज्योति चली गई, जैसे वो देख रहे थे और अचानक ऐसे लगा आंखें बंद हो गई, भगवान की दिव्य शक्ति। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ देखा, फिर दिखाई पड़ा, उनको लगा वो कोई आया ही नहीं, ऐसे भगवान की विशेष रक्षा करता। तो हमारे भारतवर्ष में तो बहुत आसान है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तपस्या उतनी नहीं है। तो ये जो एक महीना, वन मंथ है मेरे था, वन एंड हाफ मंथ जो है, ये हमारे लिए अवसर है अपनी शारीरिक और जो भी मानसिक तपस्या को स्वीकार करना। इसे श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला को बढ़ा रहा था आगे, कि चैतन्य महाप्रभु फिर अंत में जगन्नाथपुरी पहुंचे, भगवान जगन्नाथ जी का जो दर्शन करने से पहले ही झंडे को ही देखकर बेहोश हो गए 6 किलोमीटर पहले, फिर उठकर और आगे आए, और जब मंदिर में गए तो जगन्नाथ जी को देखकर उनसे रहा नहीं गया, आंखों से आंसू आने लगे, वो एक्सेसी में थे, बेहोश हो गए, और सार्वम भट्टाचार्य उनको अपने घर में ले गए। सार्वम भट्टाचार्य उस समय वैष्णव नहीं थे, वो मायावादी थे, निर्विशेषवादी, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान के अवतार हो सकते हैं। उन्होंने पूछा अपने जीजा जी से, इसका नाम था गोपीनाथ आचार्य, कि ये कौन है, ये श्री कृष्ण चैतन्य, समझा ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये तो भगवान के अवतार है, ये कृष्ण, कृष्ण कृष्ण का नाम है त्रियुगी, वो कलयुग में नहीं आते, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग में नहीं आते। तो नहीं नहीं भागवत में बताया गया, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेध। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं भगवान के इस अवतार की पूजा करते हैं, जो कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, उनका कलर गोल्डन है, ब्लैक नहीं है, अपने पार्षदों के साथ संगोपांगास्त्र पार्षदम, वो भगवान का नाम जोर से पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सर्वम भट्टाचार्य नहीं समझ पाए, गोपीनाथ आचार्य बोले आपको बताना बेकार है, ऐसे जैसे कोई नापिक भूमि होती है, कुछ नहीं उगने वाला है, उधर कितना भी बीज डाला जाए पानी डाला जाए बेकार है। तो दोनों में झगड़ा होने लगा, तो सर्वम भट्टाचार्य बोले आप गुस्सा मत होइए। लेकिन बाद में सर्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में ले गए, और एक्चुअली बोले कि आपने संन्यास ले लिया 24 वर्ष की उम्र में, बहुत डेंजरस है, माया बहुत स्ट्रांग है। भगवान कृष्ण को बता रहे हैं माया वेरी स्ट्रांग, जवानी में आपने अपनी ये संन्यास ले लिया, मैं आपको उपदेश करूंगा, मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा। क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य गृहस्थ हैं, वो नीचे बैठे हैं और महाप्रभु ऊपर आसन पर बैठे हैं सन्यासी के रूप में, मैं नीचे बैठूंगा लेकिन मैं प्रवचन दूंगा, वो उनका थोड़ा गर्व था। और महाप्रभु 7 दिन तक सुनते रहे, सब ऐसे सुन रहे थे जैसे कुछ प्रश्न नहीं पूछे। तो 7 दिन के बाद सर्वम भट्टाचार्य को थोड़ा डाउट आया, बोले बुझीता कि न बुझीता, क्या आपका समझ में आ रहा है कि नहीं। महाप्रभु बोले आप जो बता रहे हैं वेदांत सूत्र वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब उसका खुद का परपट देते हैं वो गलत लग रहा है, वो ऐसा है जैसे बादल की तरह। जब भगवान के शब्द हैं वेद व्यास के, वो सूर्य के समान है और आपका तात्पर्य बादल की तरह, ये कितना स्ट्रांग सेंटेंस है। नहीं बोले मुझे प्रभु जी आपने क्लास में प्रभुपाद की बुक से पढ़ा वो सूर्य के समान था और आपका बोलना जब बादल की तरह था, तो बहुत गुस्सा आ जाएगा प्रभु जी। ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम कोई क्लास नहीं दूंगा। धर्म भट्टाचार्य फिर दोनों के बीच में बहुत देर तक शास्त्रार्थ होता है, अंत में सर्वम भट्टाचार्य पराजित हो जाते। महाप्रभु उनको आत्मा राम से मुनैया ये श्लोक के ऊपर इतने सारे अर्थ बताते हैं, एक ही श्लोक के इतने अर्थ, तब सर्वम भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि यही भगवान की शरण में आ जाते हैं। महाप्रभु उनको षडभुज रूप दिखाते हैं, षडभुज मतलब सिक्स आर्म, उसमें क्या होता है छह हाथ में धनुष्य बाण, यस, और दंड और कमंडल और मोबाइल लैपटॉप नहीं था उस समय। और बाकी दो आपने मुरली, कृष्ण अवतार की मुरली, राम अवतार के धनुष्य बाण और दंड और कमंडल। इसके बाद सर्वम भट्टाचार्य भगवान के सुनते एक सुंदर श्लोक रचना करते, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिस्तम अहम प्रपद्ये। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में आता हूँ, जो भक्ति ऐसे सिखाने के हैं जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त है। मतलब भावुक भक्ति नहीं, भावुक भक्ति भी अच्छी है लेकिन कई भावुक भक्ति में गलतियां भी हो जाती हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति दे रहे हैं उसमें ज्ञान और वैराग्य का भी महत्व है, इसीलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करना भारत में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबके अंदर थोड़े संस्कार हैं लेकिन उस संस्कार को शास्त्र के आधार पर समझ सके, जिससे कि लोग सालों साल उस अभ्यास को पालन कर सके। और दूसरी दृष्टि देखें तो आज जो आधुनिक समाज में जो वैज्ञानिक तथाकथित वैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट, इनके जो प्रचार से सब जगह पर ये भावना फैल रही है कि भगवान नहीं है या भगवान की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें पुस्तकों के द्वारा। प्रभुपाद जी की पुस्तक जो एक साधन है, जैसे एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला जाता है, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं पुस्तक छापने के लिए और उससे आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम पराजित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो पुस्तक है एक हमारे अस्त्र हैं, जैसे कोई लड़ाई करता है, जैसे भी भारत ने कुछ आपको याद है बालकोट स्ट्राइक किया था जब फरवरी 26 को, जब क्या बोलते हैं उसको सर्जिकल स्ट्राइक है ना, तो उसके लिए बॉम्ब्स फेंके गए थे। तो ये प्रभुपाद जी के बुक्स थे ये बॉम्ब्स की तरह, ये ऐसे बॉम्ब्स हैं कि शायद कभी टाइम बॉम्ब है, कभी कभी एक्सप्लोर बाद में भी हो सकते हैं। मैं कई व्यक्तियों से मिला हूँ जो जिनको बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था, एक पुस्तक खरीदी करके उन्होंने कबट में रखा और 5 साल बाद पढ़ा और फिर वो भक्ति में आ गए, उसका टाइम बॉम्बिंग 5 साल के लिए सेटिंग किया हुआ था। तो हमको लगे गए प्रभु जी कोई हम किताब दे रहे हैं कोई पढ़ भी नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, उसने किताब को छू भी लिया तो भी उसको लाभ मिलेगा। याद जब मैं अमेरिका में पुस्तक बांटता था, एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट पे हम लोग बांटते थे, तो एक व्यक्ति ने मेरे हाथ में भागवत देखा छठा स्कंद, बोला आई वांट दिस बुक, ये बुक चाहिए। मैं क्यों चाहिए देखा तो पीछे देखा तो अजामिल की फोटो थी और सारे यमदूत। बोले मैं बहुत कुछ साल पहले मैं एकदम बहुत बीमार था, ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस, लग रहा था कि मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे ऐसे ही कोई व्यक्ति दिखाई पड़े थे, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है मेरे मित्र। दे स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ने लगे, तो मैंने समझाया फिर। तो ये प्रभुपाद की बुक्स है, ये भौतिक भौतिक चीज नहीं है, ये एक्चुअली डीटीज है अपने आप में। मान लो आपके पास कोई डीटीज नहीं है तो पुस्तक को भी भोग लगा सकते हैं। अरे पुस्तक को बहुत रिस्पेक्टफुली हमें हैंडल कर रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और साथ साथ हमें अरे स्वयं को भी पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पुस्तक वितरण करेंगे तो नेचुरल प्रश्न उठता है कि इसमें क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, नहीं नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा है, पढ़िए पढ़िए। आपने पढ़ा है क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा है। सो वी हैव टू इम्बाइब द मूड ऑफ प्रभुपाद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो लीला का मैं वर्णन कर रहा था, थोड़ी देर 5 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कैसे जगन्नाथ आरुण भट्टाचार्य को पराजित करने के बाद एक दिन बोले, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। सब भक्तों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन बोले मैं जाना चाहता। तो एक साथी को ले गए, हु वाज दैट असिस्टेंट साउथ इंडिया में, कौन? काल कृष्ण दास। और पहले स्थान जहां पर आए वो आज का श्लोक का स्थान है। पहले स्टॉप जहां पर रुके, जगह का नाम है कुर्म क्षेत्र। आप में से कोई गए हैं कुर्म क्षेत्र? आपने देखा बहुत सुंदर कुर्म भगवान का मंदिर है। कुर्म मतलब कछुआ, टोटाइस, भगवान के 10 अवतारों में से एक है। केशवधृता सुकर रूप, केशवधृता नरहरि रूप, केशवधृता कुर्म शरीर, कुर्म अवतार। तो महाप्रभु वहां पर गए और एक ब्राह्मण बड़े खुशी के साथ उनका स्वागत किया। पहले तो भगवान बहुत देर तक नृत्य कर रहे थे और उन्हें स्वागत किया, बोला आप मेरे घर में चलो प्रसाद के लिए। महाप्रभु जब घर में आए तभी ये वार्तालाप करने लगे उनके साथ। वो ब्राह्मण इतने खुश हुए, उन्होंने भगवान के चरणों को धोया, वो चरणामृत अपने पूरे परिवार के सदस्यों पर वितरित किया। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान आप मेरे ऊपर दया करो। जय पाद पद्म ब्रह्मा ध्यान करे, जो चरणों का ध्यान ब्रह्मा करते हैं सही पद्म साक्षात आइल मोर घरे। अगर आप मराठी जानते हैं तो बहुत सिमिलर है, सही चरण मोर घरे आइला, वही चरण जिसके पर ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं आज वो मेरे 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 घर में आ गए, मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं आपके आपके साथ ही मेरा परिवार का, मेरे पूरे घर का, सबका उद्धार हो गया। फिर उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं तंग आ गया हूं ये परिवार जीवन के समस्याओं से, मैं आपके साथ चलना चाहता, मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। आप से भी कईयों का मन होता होगा कई बार कि सर एंग्जाइटीज हैं, चलो सब छोड़ के चलो वृंदावन जाए, राधे राधे। आप बोलिए तो बोलने में कोई बात नहीं, राधे राधे, लेकिन अभी जाना नहीं है, पहले पुस्तक बांटने। आपको लगेगा चैतन्य बोलेंगे ठीक है घर छोड़ दो, आओ अभी मेरे पास चलो, मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, या मतलब पैदल, सॉरी गाड़ी नहीं थी। लेकिन चैतन्य प्रभु बोले नहीं, डू नॉट स्पीक लाइक दिस अगेन। महाप्रभु बोले ऐसे वार्ता कहू ना कही, गृह रहे कृष्ण नाम निरंतर लई। महाप्रभु को मना किया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कलयुग में ऐसे अचानक घर जो घर छोड़ना डेंजरस है। जिस आश्रम में उसी में रहिए, आप ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी रहिए, गृहस्थ तो गृहस्थ रहिए। सन्यासी आश्रम बहुत एडवांस भक्तों के लिए, इसलिए जिस आश्रम में आप हैं उसी में रहिए और घर में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास करें। ये अगर ब्रह्मचारी है तो आश्रम में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास करें। और फिर वो श्लोक आता है जो आज आप सबने गाया मेरे पीछे, बोले जा रे देखे तारक कृष्ण उपदेश, हमारा गया गुरु है तारा ए देश। इसका हिंदी में अनुवाद है कि आप हरेक को उपदेश करो गीता और भागवत का, इस तरह गुरु बनो और लोगों का उद्धार करो। तो महाप्रभु बोल रहे हैं गुरु बनने के लिए, खाली ब्रह्मचारी को नहीं गृहस्थ को भी। गुरु बनने का मतलब क्या है? गुरु बनना मतलब दीक्षा देना नहीं, दीक्षा गुरु भी एक प्रकार का गुरु है, लेकिन गुरु मतलब जो भगवान के संदेश को दोहराता है वो गुरु है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, ये सभी हमारे गुरु हैं। दीक्षा गुरु का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है प्रभुपाद का, जो हमारे पूरे इस्कॉन के शिक्षा गुरु हैं। तो जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो हम प्रभुपाद की शिक्षाओं सबको बांट रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें गीता और भागवत का उपदेश दूसरों को सुनाना है और निरंतर कृष्ण नाम लेना। ये निरंतर शब्द प्रभुपाद जी जोर देते हैं, इसका मतलब है कि हम 16 माला जप करते हैं, उसके बाद जब भी समय मिले हम और जप करें, और विशेष करके मन में स्मरण हमेशा करें, मन मना भव मद भक्त। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया कि आप लड़ाई करो, मामा अनुस्मर युद्ध, मेरे को याद करते हुए लड़ाई करो। ऐसे हमारे लिए उपदेश है कि भगवान का नाम लेते हुए अपने सब कर्तव्य को करें, विशेष करके इस मैराथन में 1.5 महीने में पुस्तक वितरण। श्री प्रभुपाद जी एक जगह पर बताते हैं कि अगर आप किसी को प्रवचन भी करते हैं तो थोड़ा लाभ होगा, लेकिन अगर आप पुस्तक देते हैं तो उसका जीवन बदल सकता है। ये पुस्तकें जो हैं प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के आदेश पे लिखी। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जब उनको 1936 में मिले, जब शरीर छोड़ने से पहले राधा कुंड में, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं गृहस्थ हूं, मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं क्या सेवा करूं। तो बोले कि अगर आपको पैसे मिलते हैं आप पुस्तक छापो, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, पुस्तकों का वितरण करें। तो हम सबके लिए एक सेवा का अवसर है, ये एक 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 भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का अवसर है। भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे को सबसे प्रिय वो भक्त है जो मेरा संदेश दूसरों को बांटता है। दूसरों को संदेश बांटने का दो तरीके हैं, एक तो प्रवचन के द्वारा और दूसरा है पुस्तक वितरण के द्वारा। और जो भी कोई व्यक्ति पुस्तकों को ले रहा है, पढ़ रहा है, हो सकता है तुरंत नहीं भी पढ़े, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, और अगर वो पढ़ लेता है तो और भी ज्यादा, उसका पालन करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अंत में भगवद गीता के 18वें अध्याय में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मन मना भव मद भक्त, में हमेशा कृष्ण का चिंतन करो। प्रभुपाद जी बताते हैं इसका प्रैक्टिकल तरीका है कि टू ऑलवेज चैंट द होली नेम। हमेशा कृष्ण का चिंतन करने का मतलब है हमेशा ये महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं मुंबई में था, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का क्लास था भागवतम सुबह, तो महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे जो मैं आखिरी 2 मिनट में बताऊंगा। अवंती ब्राह्मण की कहानी बता रहे थे, आपने सुनी है, कितने तो सुनी अवंती ब्राह्मण की कहानी। अवंती ब्राह्मण की कहानी है कि पहले बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, अपने आप में भी खर्च नहीं करता, किसी को देता भी नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी स्थिति आ गई, उसने सब कुछ खो दिया, घर वालों ने उसको निकाल दिया और उसके ऊपर लोग इतना बुरा व्यवहार करने लगे कि लोग उसको भोजन खाने से भी रोकते, उसके ऊपर मूत्र कर देते, उसके ऊपर गालियां देते, और उस स्थिति में उसने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया। उसने जान लिया कि मेरी सारी समस्याओं का कारण मेरा मन है, बस मुझे भगवान की शरणागति लेनी। तो वो उस संदर्भ में महाराज जी बता रहे थे कि हमारे लिए शरणागति का मतलब क्या है। हमारे लिए शरणागति का मतलब है त्रिनादपि सुनिचिन तरोरपि सहिष्णुन अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस भाव को स्वीकार करना कि मैं सेवकों का सेवक हूं, नम्र भाव से भगवान का नाम लेना, तो फिर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और दूसरों को भी सफल बना सकते हैं। तो इस महीने में हमारा यही डेडिकेशन होना चाहिए कि हम स्वयं प्रभुपाद जी की कृपा को स्वीकार करें, हरि नाम रेगुलर 16 माला लेकर, और जिसको भी मिले उसको एक पुस्तक दें। इस तरह से पूरे विश्व में भगवान का नाम फैल सकता है। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे। समय हो रहा है इसलिए अंत करेंगे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में कहाँ कहाँ गए वो इस क्लास के बाद सवेरे 10:30 बजे गौर कथामृत क्लास में लेने वाला हूँ, तो हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्रिय गुरु भाई अंतरदीप प्रभु की आज्ञा से मैं ये टॉपिक मैंने चुना है, साउथ इंडिया यात्रा। तो अभी आपको जो दिया वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, एपिटाइजर दिया, सूप दिया, नीचे जाओगे तो आपको और डिटेल मिलेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे
हरे कृष्णा। आइए हम धन्यवाद देंगे कृष्णानंद प्रभु को 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।